पाकिस्तान के बाहर जो है ना जिंदगी एक ट्रेलर है, मूवी तो यहाँ है। आई एम द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन फॉर दिस कंट्री।
मुल्क चल रहा है, एक अल्लाह की हस्ती ऊपर बैठी हुई चला रही है, वरना तो सर ये इंसानों के बस का रुक तो अब नहीं रहा था।
उसके अलावा तो कुछ शक ही नहीं है, तवक्कल तो अल्लाह।
आप समझते हैं कि रुकना चाहिए, भीतरी की उम्मीदें हैं, एक तो जाने वाले हैं।
अगर 25 करोड़ आवाम में से अगर 1 करोड़ आवाम में चल जाती है तो 24 करोड़ गधे थोड़ी है। ये मेरे वाले साहब कहते हैं कि बेटा हम सोने के काम में थे, अब जागने के काम में।
एक सलमान इकबाल इतने सारे काम कैसे?
मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, इतने ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं हमारे, उनकी तरफ देख भी लेना मोहब्बत की आंखों से, तो ये आपके पीछे अपनी जान दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर 2 साल के बाद ट्रस्ट डेफिसिट शुरू होता है, और फिर कोई आता है वो वापस ट्रस्ट को गेन करता है, और फिर वापस मुल्क चलना शुरू होता है। 25 करोड़ की आवाम है, न्यूक्लियर पावर है, हम ऐसे छोड़ देंगे अपने मुल्क को?
अच्छा, ये आप कह रहे हैं सर, हाँ, जो जा भी सकते हैं आज भी और वहाँ से आए हैं।
दुबई की मेरी पैदाइश है, मैं दुबई को दिखा है मैंने, मैं तो बहुत बड़ा कारोबार है मेरा, उसके बावजूद मैं कहता हूँ अपना मुल्क अपना मुल्क होता है।
बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा डाउन हुए सबके सब।
बिजनेसमैन सारी ज़िंदगी डाउन रहते हैं। एक तो हमने लगुना बनाया था उस जगह पर जहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं था, तो दैट विल बी अ लैंडमार्क प्लेस इन पाकिस्तान। पानी के पास लोग नहीं आ सकते, तो हम लोगों को पानी के पास ले जाते हैं। अदनान, हमारे मुल्क में अल्लाह ने बहुत कम लोगों को वो ताकत दी है और फिर हिदायत दी है। मैं जब चला जाऊँगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा?
जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल एफ एच एम पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो आज के यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, सलमान इकबाल साहब। सर कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। आप
सर, इतना कुछ, एक सलमान इकबाल इतने सारे काम इतनी सारी जगह पे कैसे? सर
मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, तो उन्होंने सब काम अपने हाथों में संभाल लिया है। वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब तो लिटरली कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूछता हूँ कि कुछ काम हम हो तो मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना कुछ काम हो, तो माई टीम इज़ ग्रेट, द बेस्ट टीम विच आई हैव। तो आई हैव माशाल्लाह 15 CEOs हेडिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ माई ग्रुप, एंड दे हैव टेकन अ, सो दे हैव गिवन मी अ बैक सीट। एक जमाने में आते हैं कोई आया था, उसने कहा था कि सेठ है सेठ है सेठ है। ARY इज़ नॉट अ सेठ ऑर्गेनाइजेशन, ARY इज़ अ थोरली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
कॉर्पोरेट
मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स।
और जो CEOs आपने रखे हैं सर, एक आम तासुर ये भी होता है कि आपने उनको बड़ी लिबर्टी दी हुई है, यहाँ तक कि आपके एंकर्स भी।
हमारे जितने भी CEOs हैं, ऑफकोर्स उनको एक KPI दिया होता है कि तुम्हें ये करना है, इस साल में तुम्हारी ग्रोथ ये है, तो उस हिसाब से कर रहे होते हैं। बट या कंपेयर टू अदर TV स्टेशंस, हमने बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी हुई है ना। आज़ादी तो है बट लिबर्टी भी साथ दी हुई है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे, जो पाकिस्तान के लिए ठीक लगे आपको,
जो पाकिस्तान के लिए ठीक हो वो
उस पर बात,
और पाकिस्तानी लोगों के लिए भी ठीक होनी चाहिए। सर वो वही वजह बनी है आपकी यहाँ तक पहुँचने की, ये टीम सक्सेस की वजह आपकी ये बनी है, लिबर्टी देना, आज़ादी देना उस एजारे राय की कि वो अपने अपनी बात आपसे कर सकें? सेठ के सामने तो बात नहीं कर सकते सर, सेठ के सामने बात करें वो अचानक जो है ना वो
नहीं। हम लोग की यहाँ एम्प्लॉय का वर्ड नहीं है, वी हैव अ कुलीग टर्मिनोलॉजी। मुझे जहर लगता है, हमारी शीट्स भी आती है ना तो उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं आती, तो आई वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। और बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ARY 95 के अंदर, जब पढ़ के वापस आया था, तो ऑफकोर्स मेरे वालिद साहब, मैं, ताया, हाजी रज़ाक, दे वो ऑल रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब 96-97 के अंदर जब मैं ट्रेजरी संभाला अपनी फैमिली का, आई वॉज हेड ऑफ ट्रेजरी, तो मैं एक गोरा ले आया था कैनेडा से, तो कैनेडियन बैंक से एक हेड ऑफ ट्रेजरी को लेकर आया कि तुम हमारी ट्रेजरी संभालो। तो वो सी बात बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैं ताया ने बुला के मेरी क्लास ले ली कि यार देखो इतने में बंदा मिलता है दुबई के अंदर, तुमने इतने सारे पैसे दे दिए। तो वो एक थी हैबिट थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक सोच थी, उसको हमें टाइम लगा बदलने में। आज माशाल्लाह ARY को, ARY डिजिटल को 25 साल हो गए, और 24 साल हो गए, और मुझे काम करते हुए तकरीबन कोई 30 ईयर्स प्लस हो गए मुझे।
सर एक दो मैंने आपका इंटरव्यू लिया था बहुत पहले, उसमें आपने कहा था कि यार मैं सोने के बिजनेस में था।
ये मेरे वाले साहब कहते हैं कि रे बेटा हम सोने के काम में थे, अब जागने के काम में आ गए।
जागने के काम में,
क्योंकि ये TV जो है ना, ये सोने नहीं देता,
ये सोने नहीं देता।
ये जब तक वसीम बदामी अपना लास्ट मिनट बंद नहीं करता ना 12 बजे, तब तक हम जाग रहे होते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई ना कोई हादसा हो जाए पाकिस्तान में या दुनिया भर में, तो हमें वो जगाता रहता है,
जगाता रखता है
24 घंटे का।
और सर वो सोने के बाद भी आपको होता होगा जहन में कि यार सुबह अब कैसी होगी आज,
नहीं
कोई कौन सा बंदा मुझे क्या, कहाँ से एक आवाज़ आने वाली कि यार ये हुआ कल रात?
पहले मैंने कभी फ़ोन साइलेंट नहीं करता था, अब मैं रात को जब सोने जाता हूँ तो फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ ना तो ठीक ठाक किस्म के मैसेज, अभी भी आप देखेंगे मेरे फ़ोन को तो मेरे पास तकरीबन कोई 700 से 800 व्हाट्सएप मैसेजेस आए होंगे जो कल के जो मैं नहीं पढ़ सका। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ द वर्क आई हैव साइंड अप फॉर।
अब इसको आप इंजॉय करते होंगे?
मैं अदना 50 साल का होने वाला हूँ मैं
सर,
तो अब थोड़ा सा है ना इन्जॉयमेंट की जगह अब थोड़ी सी मसरूफियात डिफरेंट, अब मैं आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट डू समथिंग फॉर द कंट्री विच आई हैव बीन डूइंग, बट अब मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, दैट्स व्हाई आई बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब कुछ उस तरफ जो है ना टाइम स्पेंड करना है मुझे।
अच्छा, वो भी बहुत रिलाई करते हैं सर आप पे, उनका भी बड़ा मान सम्मान है आप कि जी ये हैं हम यहाँ बैठे हुए, ये सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारी सही चीज़ को दूर तक पहुँचा सकते हैं, तो आप करते भी आ रहे सर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी, उसके अलावा भी सर कराची की आवाम के लिए इस तरीके से किया, और एयरवाइज से पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहा होता है कि आप अपनी पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं।
ठीक है, जैसे PSL शुरू हुआ था तो कराची किंग्स वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम, कराची बिंग द बिगेस्ट सिटी वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम, और मुझे याद है जब मैंने कराची किंग्स पिक किया था जब PSL शुरू हो रहा था, हम पांच के अलावा कोई छठा बिडर था ही नहीं, पांच लोग थे, पांच टीमें थी, तो वो हम कहते हैं ना हम वो पहले पांच बेवकूफ़ थे जिन्होंने हमने कहा कि हमें कुछ करना है इस मुल्क के लिए। बस मेरी बहुत मेरी और हमारी जो कुलीग्स हैं उनकी सबकी एक बहुत बड़ी सोच है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, आपको पता है 65% ऑफ आर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, तो जितने भी बच्चे हैं ना उनको अपनी एनर्जी बर्न करनी है, एंड आई बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज द ओनली प्लेस जहाँ बच्चों को आप, एजुकेशन तो है, स्पोर्ट्स इज द ओनली प्लेस जहाँ आपको बच्चों को एनर्जी बर्न करने का एक मौका मिलता है।
फिजिकल स्पोर्ट्स, वो जो हमारी गेमिंग से बाहर निकल के मोबाइल से बाहर निकल,
बिल्कुल 10 साल पहले क्रिकेट वॉज कम्प्लीटली पाकिस्तान में ख़त्म हो गई थी क्रिकेट, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ख़त्म हो गई है हमारी क्रिकेट, बट उस वक्त तो बिल्कुल ही बच्चों के अंदर शऊर ख़त्म हो गया था क्रिकेट का, फुटबॉल देखते थे लोग, यू नो टेनिस पे चले गए थे, हॉकी भी ख़त्म हो गई हमारे मुल्क के अंदर सैडली, तो हमें रिवाइव करना था। तो जब मैंने कराची किंग्स लॉन्च किया और जब मैंने पहला फंक्शन, उस वक्त पॉलिटिकल हालात बहुत ख़राब थे कराची के, उस वक्त मुझे याद है DG रेंजर्स थे जनरल बिलाल, उनके पास मैं गया और मैं कहा मुझे कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर कराची किंग की लॉन्च करनी है, तो मुझे कहा कि इस वक्त इतने बुरे हाल है कि हम पब्लिक कॉन्ग्रीगेशन अलाउड नहीं है, और तुम कितने बंदे बुलाओगे? मैं कहते 30-35 हज़ार लोग आएंगे। तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, हाउ विल बी हैंडल दिस टेररिस्ट अटैक्स, ये अटैक वो अटैक,
और बहुत बुरा हाल था,
बहुत बुरा हाल था कराची का 10 साल पहले का, मतलब बात करो 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी और आपस में सबकी बहुत बहुत बड़े इशूज़ हुए थे, और जनरल बिलाल ने मुझे हिम्मत दी, हमने लॉन्च किया, और मुझे मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है, फ़ोन पे है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ वीडियो। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने कराची की फैमिलीज थी वहाँ पे, बच्चे थे, जो उनकी मैंने आँखों में और जो उनकी चेहरों पे खुशी देखी,
ओहो
कि यार
बहुत बड़े पॉज के बाद,
बहुत बड़े पॉज के
रोडों पे लड़ाइयाँ चल रही थी, फायरिंग चल रही थी उस ज़माने में,
कि कराची के अंदर वापस रौनक आ गई,
क्या बात है।
और हमने वो शो किया था, 35,000 से 40,000 लोग वहाँ मौजूद थे, पूरी हमारे कराची की टीम मौजूद थी,
और बड़ी बात थी सर, बड़ा मौका था कुछ मामलात ख़राब करने के लिए भी, और आप सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इस तरह संभाला है उसको।
आप यकीन करेंगे कि मैं और जनरल बिलाल जब साथ बैठे हुए थे तो हम दोनों शो से ज़्यादा वो अपने फ़ोन पे थे और मैं वॉकी टॉकी पे था कि खुदा ना खास्ता कुछ होना जाए, मतलब तो वो इतनी हम लोग की, मगर हमने पूरा शो कम्प्लीट किया रात को 12-12:30 बजे तक, और एक भी
कोई बदनसी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ,
क्योंकि हमारे लोग बहुत प्यारे हैं नान, मतलब हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना उनको कोई लीड करने के लिए नहीं मिल रहा, मगर इतने ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं हमारे कि आप उनको हल्का से भी कुछ उनकी तरफ देख भी लेना मोहब्बत की आंखों से, तो ये आपके पीछे अपनी जान दे देते हैं। ये खासियत है हमारे मुल्क के,
कोई लीड करने वाला चाहिए सर, अगर कोई लीड करने वाला मिल जाए ये कौम पूरी की पूरी एक शाना बशाना सब खड़ी हो सकती है सर।
हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि इतना कुछ कर सकते हैं हम लोग अपने मुल्क के लिए, और कर भी रहे, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर भी रही है ना, आप देखें ना कि इस शहर को सबसे बड़ी वेल्थ इस मुल्क में इस शहर के अंदर है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा बिजनेस हाउसेज इस शहर में है, और हमारा शहर देखें कराची बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि
लवारिस छोड़ा हुआ सर, लवारिस छोड़ा हुआ सर। देखे ना अभी वो रिसेंटली एक बिजनेसमैन से जो हादसा हुआ, अगर इस किस्म के बिजनेसमैन रास्तों से उठा लिए जाएंगे तो सर फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन लोग यहाँ रहेंगे, निकल जाएंगे सर आहिस्ते सब लेके अपने पैसे।
वो अभी बीच में मुझे किसी ने कहा था कि इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ब्रेन ड्रेन कभी मैं इस पर यकीन नहीं करता। इसकी वजह यह है कि अगर 25 करोड़ आवाम में से अगर 1 करोड़ आवाम में चल जाती है तो 24 करोड़ गधे थोड़ी है।
ओह क्या बात की,
ये सब ब्रेन ड्रेन हो गई,
ये सारे ब्रेन ड्रेन है सर। हाँ, इनको मौका देने की देर है। हाँ, ये सब स्टार्ट हैं,
ये सब 24 करोड़ आवाम बाशऊर बहुत इंटेलिजेंट आवाम है हमारी। हाँ, उनमें से 25 करोड़ में से 1 करोड़ चले गए, हमारे लिए बेहतर है ना, डॉलर ला के देंगे ना। वो इसलिए वो सब साथ नहीं गए, वो अपने बच्चों को छोड़ कर गए, अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, बच्चों को, सबको छोड़ कर गए, पैसे भेजेंगे। पहले 70 लाख थे, अब 1 करोड़ 70 लाख हो गए पाकिस्तानी। अगर $100 भी भेजें तो महीने के कितने हो गए। तो हमारे लिए फ़ायदा है ना, मैं तो कहता हूँ अच्छा है जाए, क्योंकि जब वो जाएंगे ना तो यहाँ के लोग जो है ना वो फिर
शायद उनको मौका मिल जाए, ऊपर आ जाए। वो कहते हैं ना मजबूरों के इंसान मरते तो क्या ना करते वाली कहानी आ जाएगी, करेंगे सर।
आप देखें ना फिलीपींस के अंदर, देखें ना आप कितने फिलीपिनो बाहर हैं।
हाँ,
कितने डॉक्टर अभी आजकल, नर्सेज, नैनीज, सब फिलिपिनोज हैं,
कमाल काम कर रहे हैं सर पूरी दुनिया में।
और इंडियन देखें आप, बस कहते हैं सेकेंड, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड हाईएस्ट माइग्रेशन इन द लास्ट 2 ईयर्स इज आइदर बाई इंडियंस और पाकिस्तानीज। मगर इंडिया ग्रो कर रहा है, जो ही तो इंडिया ने क्या ब्रेन ड्रेन हो गया, हम फारिग हो गए।
हम सर, हमारे वाले में ट्रस्ट डेफिसिट है कहीं उनके पास, ओवरसीज पाकिस्तानीज का थोड़ा हमारे पे।
हते कि ना पॉलिटिकल हालात की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना हमारा पाकिस्तान के अंदर हर 2 साल के बाद ट्रस्ट डेफिसिट शुरू होता है, और फिर कोई आता है वो वापस ट्रस्ट को गेन करता है और फिर वापस मुल्क चलना शुरू हो जाता है। 25 करोड़ की आवाम है, न्यूक्लियर पावर है, हम ऐसे छोड़ देंगे अपने मुल्क को, ठीक है ना। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दोनों तरफ को सोचना होगा, बल्कि तीनों तरफ को सोचना होगा, ठीक है ना। और जो भी करें इस मुल्क के लिए कोशिश करें।
ये तीन तरफ आपने बहुत अच्छा बोला सर,
क्योंकि दो तरफ तो, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना,
बहुत सारे एलिमेंट्स।
मीडिया भी एक एलिमेंट है, जुडिशरी भी एक एलिमेंट है, पार्लियामेंट भी एक एलिमेंट है, हमारी जो
एस्टेब्लिशमेंट
है, सिक्योरिटी फोर्सेज, वो भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, वो भी एक, और हमारे अवाम भी है, ठीक है ना। अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि जो भी मुल्क के लिए अच्छा होता है, जो मुल्क के लिए अच्छा है वो करें। हम इतने बदनाम हो गए पूरी दुनिया में आपसी सियासत के चक्कर के अंदर, हम दुनिया में ख़राब हो रहे हैं ना। तो हमको अपना सोचना पड़ेगा। कभी कभी हर इलेक्शन के वक्त कहते हैं कि ये धांधली हो गई है, हर इलेक्शन के वक्त। मुझे 24 साल हो गए,
जो हारेगा सर वो कहते हैं धांधली हुई,
धांधली हो गई,
ठीक है, चाहे उस इलेक्शन में धांधली हुई हो और या ना हुई हो,
है ना। 2/3 मेजोरिटी जब हुई थी अपना नवाज शरीफ साहब की, तो उसने भी कहा था किसी ने नवाज शरीफ में, कुछ सीटें हमारी जो है ना
जीतने वाला कह रहा
है। हाँ, 2/3 मेजोरिटी मिली थी, कुछ सीटें हमारी जो है ना, क्योंकि इंसान है ना, इंसान को कब पूरा मुतमईन हो, कब इंसान
नहीं होता, शुक्र नहीं है, नहीं है सर, इतमान
जब सब कुछ मिल जाता है उसको,
उसके बाद भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है,
कुछ चाहिए होता है उसको, ठीक है ना। मतलब कोई और दावा कर देता है वो, ये तो चलती रहती है कहानी।
सर बेहतरी की और उम्मीद है, मतलब आप जैसे, आपके पास तो सर सब कुछ है, जा सकते रहे, यूथ भी डिसअपॉइंट है हमारी, वो भी जाना चाहती है, तो आप समझते हैं कि रुकना चाहिए, बेहतरी की उम्मीदें हैं, एक तो जाने वाले हैं और एक ब्रेन ड्रेन यहाँ भी है जो रुक के काम करना चाहता है, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी सर आगे जाके, आपको लगता है या ये रैंपलिंग चलती रहेगी?
अदनान, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, और ये मुल्क आई एम द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन फॉर दिस कंट्री, ऑन दिस कंट्री, कहीं जाने वाला है। मुझे पता है कि UAE अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, आज से लोग UAE जा रहे हैं ना, क्योंकि उनको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है, अब वो भी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट चलें, वो भी एक कहानी है। जहाँ भी जाओगे तुम, तुम्हारे मुल्क जैसा सुकून, मैं सारी ज़िंदगी दुबई में रहूँ, मेरी पैदाइश दुबई की है, ठीक है ना, मैंने स्कूलिंग दुबई में की है, मैं दुबई में को उस वक्त देखा है जब हमारी स्कूल के आसपास रेगिस्तान था, ठीक है ना, जो आज मेन दुबई बन गया है, वहाँ हमारा घर था, ठीक है ना। हम लोग को, जो भी दुबई जानता है, हम लोग को बार दुबई से ट्रेड सेंटर के लिए टैक्सी नहीं मिलती थी 80s 90s के अंदर। पूरे दुबई के अंदर 5 धर्म लेते थे टैक्सी वाले, जहाँ भी जाना है आपको, और आपको ट्रेड सेंटर जाना है ना, तो टैक्सी वाले 9 धर्म लेते थे और मानते नहीं थे जाने के लिए। वो मुल्क तरक्की कर गया ना, वहाँ पे तो तेल नहीं है, अबू धाबी में तेल है, दुबई में तेल नहीं है, वहाँ पे क्यों तरक्की किया? लीडरशिप की सिंक्रनिटी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है दुनिया के अंदर. ए आर वाई क्यों, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों अच्छा करती है, क्योंकि कंटिन्यूटी है ना. लोगों को पता होता है कि यार मेरा सीईओ है ये एटलीस्ट 10 साल तो देगा इस कंपनी को मिनिमम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है ना. हमारे मुल्क में सबसे बड़ा, अब इंडिया ने तरक्की क्यों की, क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंटिन्यूटी है ना, थर्ड टर्म कर रहा है प्राइम मिनिस्टर. हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वो कंटिन्यूटी करते नहीं है. जब तक कंटिन्यू, मैं कहता हूँ कोई भी आए, जब तक कंटिन्यूटी नहीं चलेगी ना ये मुल्क तरक्की नहीं करेगी.
सर छोड़ते कब हैं सर ये लोग आपस में एक दूसरे को, ये छोड़ते भी तो नहीं है सर.
मैं तो कहता हूँ 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में तय कर लें 10-10 साल कि 10 साल तुम ले लो,
अब ये
10 साल तुम ले लो,
10 साल तुम ले लो, पहला 10 साल किसका है.
एग्जैक्टली, यही तो मसला है. मुझे याद है ना एक एक कोई कोई यूबीएल बैंक थी जिसकी आधे से पार्टनर थे शेख मुबारक बिन नयान थे और सर अनवर परवेज थे, 50-50
वो बैंक अल्फला ये पूरा ग्रुप.
हाँ, पहले 3 साल उन्होंने किया, फिर 3 साल उन्होंने किया. आज यूबीएल देखो प्राइवेटाइज होने के बाद बहुत बड़ी बैंक बन गई है. तो आप भी तय कर लें पार्टियों से कि भाई ठीक है यार तुम मुझे पूरे 5 साल करने दोगे.
कोई स्ट्रॉन्ग मीडिएटर चाहिए सर बीच में तीनों के लिए.
तो शायद हमारे बहुत सारे मीडिएटर हैं बट तीनों को बैठाना मुश्किल काम है.
हमारे अरशद शरीफ साहब, अभी मैंने आपकी डीपी देखी ट्विटर की भी सर, आपकी दोस्ती भी थी, कैसा सर वो टाइम और अब तक कैसे उनको मिस करते हैं सर.
वो रात का फ़ोन कॉल मुझे आज तक याद है, 23 अक्टूबर वाला, भूला नहीं जाता. तो वो जो महीना है ना, हफ्ता,
ओहो
बड़ा भारी गुजरता.
ओहो
अल्लाह उसकी मगफरत कर रहे हैं. आई एम श्योर शहीद है हमारा और उसने बड़ा काम किया है हमारे मुल्क के लिए, बहुत बड़ा नाम था. बस अफसोस इस बात का कि बहुत जल्दी चला गया, बहुत जल्दी चला गया. और उसकी जो उसकी जो खला है ना वो हम
पूरी नहीं कर पाएंगे
है ना. ऐसा एंकर पाकिस्तान में शायद अब मुश्किल से आए. वेरी सिंसियर, वेरी डायरेक्ट मैन
जो दिल में है लोगों, दोस्तों यारों का यार सबके साथ. और सर किसी के साथ उनकी ख़राब तो कभी भी नहीं रही, मतलब बाहर भी लोगों के साथ भी सबके साथ.
ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड. ख़राब तो की उसने बहुत लोगों के साथ
डिसिप्लिन के अंदर,
अच्छा ही भी की. बट ही वॉज ऑन फैक्ट, ग्राउंड ऑफ फैक्ट.
जब सच बोलेंगे तो खराब
वो फैक्ट.
हम लोग का
काम ऐसा है ना, हम लोग का काम कैसा है. हमें लोग कहते हैं कि ये खबर आपने चलाई क्यों. अब अगर आग लगी हुई होगी तो मैं तो कहूँगा ना धुआं है. अब एक दफ़ा मैंने किसी को एग्जांपल दिया कि बाहर आग लगी हुई थी, आप कहें कि भाई बाहर बर्फ़ गिर रही है, तो मैं कह सर बाहर तो आग लगी हुई है, तो मैं कैसे कह दूँ कि बर्फ़बारी हो रही है. तो कहते हैं बर्फ़ की तासीर भी तो गर्म होती है.
ओहो
तो
क्या बात घुमा दी.
हम इस चीज़ से फंसे.
ओहो बर्फ़ की तासीर.
वी हैव टू शो व्हाट इट इज़. हाँ ऑफकोर्स हमारे जो प्रोग्राम
हालात कहना है, शहीद कहना है, ये मसलों से निकल नहीं पाएंगे सर.
हाँ हम इस मसलों से निकल पाएंगे बट फिर भी मैं कहता हूँ कि हम वी आर ग्रेट नेशन विद ग्रेट पीपल विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. हमारे मुल्क में जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना
वो दुनिया में कहीं
तो सारी जिंदगी बाहर रहे.
अच्छा ये आप कह रहे हैं सर, हाँ जो जा भी सकते हैं आज भी और वहाँ से आए हैं और आप कहते हैं हमारे मुल्क जैसा कोई और मुल्क नहीं.
मैं कहता हूँ मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ ना. मैं तो दुबई की मेरी पैदाइश है, मैं दुबई को दिखा है मैंने. मैं तो बहुत बड़ा कारोबार है मेरा. हमने पैसे दुबई में कमाए और वहाँ से वापस पाकिस्तान लेकर आए. जब टीवी शुरू किया था उस वक्त दुबई में बहुत बड़ा सेटअप था हमारा, गोल्ड के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर. रियल इस्टेट की मार्केट को उठाने वाला दुबई में हम थे 1999 के अंदर जब हमने इंटरनेशनल सिटी लॉन्च किया था. तो उसके बावजूद मैं कहता हूँ अपना मुल्क होता है ना. जो आपको तकलीफ सिर्फ ये होती है आपको जब आप 1.5 घंटा फ्लाई करके आते हैं तो आप जो फ़र्क देखते हैं ना बस वो तकलीफ होती है.
एयरपोर्ट से बाहर निकल, एयरपोर्ट तो उतरते साथ ही सर.
हाँ मतलब एयरपोर्ट के साथ ही आपको समझ
शुरू हो जाता है सर आप. क्यों आपको और वो फ़र्क सर चेंज नहीं हो रहा, यूँ का यूँ ही है. अच्छा वहाँ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, वहाँ दिनों में चेंज हो रहा है.
अच्छा वहाँ पर पोलिटिकल एनिमल्स भी डिफरेंट है, यहाँ पोलिटिकल एनिमल्स भी डिफरेंट है कि ना. और यहाँ पर हम लोग का मुल्क जो है ना पिछले 25-30 सालों से टेररिज्म के अंदर उलझा हुआ है. देखिए ना कुछ दिनों पहले शारे फैसले पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो हमारे यहाँ ये भी तो बहुत बड़े मसले हैं ना कि हमने बड़े पंगे पाले हुए ना दुनिया के अंदर है ना. अब जब पंगे पालेंगे तो आपके साथ होगा ऐसा. तो बट उसके बावजूद आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव.
अच्छा इस इन्फ्लेशन के साथ, इसी पंगों के साथ, इसी धमाकों के साथ मुल्क चल रहा है अब भी.
हाँ
ठीक है ना, इसको सर पीछे कोई हस्ती है, एक अल्लाह की हस्ती ऊपर बैठी हुई चला रही है, वरना तो सर ये इंसानों के बस का रुख तो अब नहीं रहा था।
उसके अलावा तो कुछ शक ही नहीं है ना, तवक्कल तो अल्लाह, हम तो चलते ही
तवक्कल पे चलते हैं,
हम तो पूरा मुल्क हमारे तवक्कल पे चलता है ना। सुबह जो बंदा जो डेली वेजेस वाला आदमी है
वो भी तवक्कल पे निकलता है,
वो भी सुबह उठ के देखता है यार आज कमाऊंगा तो ना तो घर खाना लेके जाऊंगा, तो वो तो है ना। मगर हमें अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क में, उनको बाहर निकालना है, और हमें जो यंग जनरेशन है ना उनको पॉलिटिकल तमीज़ सिखानी है। पॉलिटिक्स जो है ना वो मारा मारी नहीं है,
नहीं है, और ना अब्यूज़ है,
हाँ
ना,
ना अब्यूज़ है ना गाली है,
ओपिनियन है।
पॉलिटिक्स इज, पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है कि वो बैठ के मसले का हल निकाले, अपना काम करे, इस मुल्क की तरफ ध्यान दे, अपनी सियासत।
और सर अवाम भी, अवाम भी सर गाली की सियासत पे या किसी दूसरे को गाली देना ट्विटर पे इधर उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गालम गलोच से
नहीं। अभी आप देखिएगा ना, अभी आप उसको पोस्ट करेंगे ना
जी सर
हमारी वीडियो को, जी कमेंट्स पढ़िएगा आप, बट हम मातर पिता आज़ाद हैं, हम मातर पिता आज़ाद हैं, जिसकी जो मर्जी आती है।
अच्छा टीवी पे ऐसा नहीं हो सकता सर, अखबार में ऐसा नहीं हो सकता, ये सोशल मीडिया ही जहाँ पर आप ये गंद कर सकते हैं।
अच्छा ये वो लोग हैं जो सामने नहीं आते,
नहीं सामने आएंगे सेल्फी खिंचवाएंगे आपके साथ,
हाँ हाँ एग्जैक्टली मुझे एक दफ़ा किसी ने कोई कमेंट पास किया उस पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे, तो उसने मेरे को डीएम किया मुझे, तो कोई बात बोली उसने कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप ये क्यों नहीं करते। तो मैं कहा, मैं लिखा ही, मैं कहा बच्चे कहाँ रह रहे हो तुम उस वक्त, कहते कैनेडा में टोरंटो में। मैं कहा बेटा तुम क्यों नहीं आते मज़ारों में, कहते अम्मी ज़्यादा नहीं देती। तो मैं कहता तुम्हारे क्या रहते हैं, मेरी अम्मी नहीं है क्या,
क्या बात है।
हाँ जब जब तुमको इतना शौक है अपनी ओपिनियन क्रिएट करने का तो आओ ना इस मुल्क में वापस,
यहाँ करो,
हाँ यहाँ के करो ना, बैठ के वहाँ
ठंडे कमरों में,
ठंडे कमरों में बैठ के बातें करना बड़ा आसान काम है
सर। एयरवे फिल्म्स, फिल्म इंडस्ट्री हमारी बड़ा फुकदान में, बड़ी मामला ख़राब थे सर, आप आए, आपने एकदम से उसको हाथ लगाया और सिचुएशन को बेहतर किया। एक तो सर वहाँ आने की क्या वजूहत बनी, दूसरा सर क्या ज़रूरत थी उस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, क्या बेहतरी आई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में।
मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ
जी सर,
छोटी सी। मैं इंडिया गया कुछ सालों पहले, तो सो जब मैं था तो वहाँ पे उस वक्त सब सिनेमाज बन रहे थे हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडियन मूवीज़ बड़ी स्पीड से आ रही थी पाकिस्तान में। तो मैं गया, चूँकि हम लोग का ताल्लुकात है ऑफकोर्स इंडिया से, हम लोग गोल्ड का काम करते थे बहुत इंडिया में, हम पहले पाकिस्तानी थे इसका ऑफिशियल गोल्ड जाता था इंडिया के अंदर, रेनबो हार्ट्स और या वे गोल्ड। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पे पूरी मार्केट स्वीप कर ली, सिवाय एक स्टूडियो के मैंने सारे स्टूडियो से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे आ गया कि जितनी भी आइंदा इंडियन मूवीज़ लॉन्च होंगी ना वो हम हमारे बैनर के थ्रू होंगी, या वे फिल्म को लॉन्च करेगा पाकिस्तान में। तो तकरीबन कोई उस वक्त डॉलर था तकरीबन 100 रुपये का, तो तकरीबन आप समझ लें कि मैंने कोई 5 साल की कमिटमेंट की थी बिटवीन 3 to 5 billion रुपीज़ की, जो मुझे देनी थी उनको। हम रात को होटल पे आए, मैं जजीस मेरा सीईओ और मेरे जो मिडिल्स के सीईओ हैं यासर खान साहब, हम तीनों बैठे हुए थे। अच्छा 2 दिन के बाद मेरी साइनिंग सेरेमनीज थी ना हर स्टूडियो के अंदर। रात को सुबह के 2:30 बजे मैं उठा, मैंने फ़ोन के दोनों कमरे में, दोनों सोए हुए थे, मैं कमरे में आओ, मैं कहा यार एक बात बताओ, किसी बच्चे को मैं गोद लेता हूँ तो बच्चा मेरा कहलाएगा, कहते नहीं, कहते क्या बात कर रहे हो, बस सो ही नहीं गया, कितने बज गए। तो मैं कैसे उसका जवाब दो मुझे कि अगर मैं किसी बच्चे को गोद लेता हूँ तो वो बच्चा मेरा कहलाएगा, 18 साल के बाद बच्चा वो ना महरम हो जाएगा अपनी माँ के लिए, और अगर लड़की होगी तो मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार इतने पैसे खर्च करें ना, जब उससे सबको डिपॉजिट भी देने पड़ेंगे 5%, 10%, तो इतने पैसे देकर बच्चा भी अपना ना हो तो फ़ायदा क्या। मैं काम करते हैं, इतने पैसे लगा देते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर,
क्या बात है,
कुछ तो होगा ना। उसके बाद फिर हमने जवानी फिर नियानी 1, जवानी फिर नियानी 2, लाहौर नी पंजाब भी जाऊँगी, अभी एक शूट हो रही है मूवी हमारी, अभी हुमायूं सईद गया हुआ है मारा खान के साथ लंदन, वहाँ एक मूवी शूट हो रही है हमारी, अभी इस वक्त शूटिंग चल रही है हमारी, इंशाल्लाह ईद पे लॉन्च करेंगे उसको। पर सैडली पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमारे सिनेमास पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, सिनेमा से सीटें बहुत बढ़ गई थी, पर उतनी ग्रोथ नहीं जितनी होनी चाहिए कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश। बट अभी देखिए मौला जट डिड वंडरफुली वेल, अभी यूके यूरोप में उसको सक्सेस मिली है, इट वॉज इन कॉम्पिटिशन
ही बनी है, सब कुछ हुआ है,
हाँ
यहीं के लोग हैं,
इट वॉज इन कॉम्पिटिशन विद इंडियन मूवीज. तो इंडियन मूवीज मुझे याद है 25 साल पहले 7 करोड़ का 8 करोड़ का बजट होता था इनका, अब इनके 50-50, 100-100 करोड़ के बजट होते हैं, 2-2 अरब रुपये करते हैं. हम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी ना कभी हमारा जब वक्त आएगा, मगर साथ नहीं छोड़ना, अपनी इंडस्ट्री पे मेहनत करनी है. इंशाल्लाह कभी कभी वक्त आएगा हम भी उस तरफ जाएंगे
सर. लेकिन बहुत बेहतरी आ गई है,
बहुत बेहतरी आ गई है.
जो हालात थे हमारे वो तो सर निकल ही मारे थे हम लोग ना, हम तो हमारा हमारी फ्यूचर तो था ही नहीं, एक क्रिएट हुआ है. और अब लोग कूदे भी हैं इसके अंदर, देखे ना इस ईद पे 6-6 मूवीज़ लग गई थी. हाँ. तो अब सिचुएशन चेंज हुई है.
हमारे डैमेज तो माशाल्लाह वापस वही 70s वाले डैमेज 80s वाले डैमेज आ गए जो इंडिया में और दुनिया भर में.
अच्छा आपके ड्रामे तो सर पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, जो आप लोग ड्रामे बना रहे हैं.
अगर पाकिस्तान के ड्रामे, मैं अभी WMO का इवेंट था अपना वर्ल्ड मेमोराइजेशन का इन द UK, तो हमारे 9 चैप्टर्स हैं. तो साउथ अफ्रीका से लोग आए थे, इंडिया से लोग आए थे. हमारे एक्स प्रेजिडेंट हैं मुझसे एक टर्म पहले, ही इज़ 84 ईयर्स ओल्ड, साउथ अफ्रीकन है ना. वो मेरे कान में आकर बोलते हैं, आके बोलते हैं कि वो तुम्हारा ड्रामा नहीं है कभी मैं कभी तुम. मैं कहा, कहते वो मैं बहुत बहुत शौक से देखता हूँ. तो मैं कहा आपको तो समझ नहीं आती उर्दू. कहते बीवी को तो आती है ना.
बीवी को तो आती है
ना. कहते बीवी देखती है, मैं देखता हूँ. कहते मैं समझ लेता हूँ.
एयरवेल ड्रामा सुपरहिट, माशाल्लाह.
इस दफा तो हमारे ड्रामे जो है ना, बिस्मिल, नूर जहाँ, सारे ड्रामे जो है ना बहुत ज़्यादा हिट हो गए.
अच्छा ये यहाँ ऐसा ऐसा बूम दिखाया आपने कि अब एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है, अब उसको मीट करना भी सर आसान नहीं रहा है.
हाँ, जैसे पहले हम टीवी का ड्रामा था बहुत फेमस, माया खान वाला, क्या नाम था उसका, हम सफ़र. उसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया.
वो फिर
उसके बाद फिर हम आए अपना मेरे पास तुम
उसने दबाई मचा दी ना. फिर
अब ये कभी मैं कभी तुम, उसने तो
इंशाल्लाह क्या बन गया उस पर, किताबें, शायरियाँ, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं टिकटॉक पे.
अदनान इंशाल्लाह मैं तो बताऊँ तुम्हारे जो हमारे बच्चे ना पाकिस्तान के, वो अभी इनका वक्त आ गया, ये दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बेंचमार्क जरूर बनाएंगे.
एक्सेलेंट सर, बड़ी ऑप्टिमिस्ट हैं सर आप. मुझे अंदाजा नहीं था आप बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं. यूजुअली बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा डाउन हुए सबके यार, कुछ नहीं रहा मुल्क में, कुछ नहीं.
बिजनेसमैन सारी जिंदगी डाउन रहते हैं. मैं तो बताया ना, जब बहुत पैसे कमाएंगे ना तो कहते हैं यार थोड़ा सा ज़्यादा शायद
कम रह गया,
मैंने गलती कर दी. मैं यूँ कहता तो और पैसे बन जाते. पैसा करना क्या है, साथ लेके जाना है कब्र में, है ना. मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ कर लेना, हमारे शहर के लिए कुछ कर लेना.
अच्छा हम अपने बच्चे रहे सर यहाँ पर, रहने तो हैं अपने बच्चे रहे, और जितने भी ऊपर बाहर ले जाओ बच्चे, बच्चों ने भी आना है,
कहाँ जाना है,
बाहर भी तो जगह नहीं आप लोगों के पास, कहाँ रहेंगे आप लोग. आपके लिए अपना मुल्क तो मुल्क ही है ना.
मैं बताऊँ ना, जो लोग बाहर रह के आए हैं ना, जो बाहर चले गए हैं डर की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, खौफ की वजह से, कुछ भी है, वहाँ कहते हैं यार वापस जाना है हमें, ठीक है ना. तो है वो वापस आएंगे, ये सब टेम्प्रेरी गए. हम कहते हैं पाकिस्तान के बाहर जो है ना ज़िंदगी एक ट्रेलर है, मूवी तो यहाँ है ना.
मूवी यहाँ है और मूवी आपने मूवी में आना है.
हाँ मूवी आना है.
ट्रेलर आपने जितना चलाना चला लें, मूवी तो स्टार्ट होनी है. आप
ट्रेलर में आ गए तो फिर मूवी में आना है.
सर ड्रामो की तरफ से आते हैं तो जीतो पाकिस्तान भी आपको ऐसा ट्रेंड सेट किया हुआ है कि
हाँ माशाल्लाह
कॉम जो है ना वो शाम को ऐसा लगता है.
जीतो पाकिस्तान में सबसे जो फेमस सेगमेंट है ना वो है गोल्ड का हमारे मुल्क में.
वो भी सर आपका फेवरेट सेगमेंट होगा.
हाँ मेरा, मुझे याद है जब शुरू में जीतो चलता नहीं था, शुरू में बिकम जब लॉन्च किया था तो हम वाइस साहब के पास गए. वाइस साहब ये तो अच्छा, वाइस साहब के हर सवाल के जवाब का हल है ना वो गोल्ड है. जो चीज़ कहो ना कहते हैं यार तुम गोल्ड ले दो, मतलब हर चीज़ का हल गोल्ड है. तो मैंने इनके पूछा, मैं कहा भाई कि वो चल नहीं रहा, लोग कह रहे कि आपने गलती की फाद मुस्तफा को लेकर. कहते अच्छा तुम गोल्ड निकालना शुरू कर दो. मैं कहा यार फिर वही आपका हल यही है. कह तू ट्राई तो कर. आज वो जो है ना जो डब्बा खुलता है
गोल्ड का,
सबसे ज़्यादा सेगमेंट वो दिखा जाता है
गोल्ड
है ना. क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा गाड़ी थी 25 लाख रुपए की, गोल्ड था 10 लाख रुपए का. उस खेलने वाले ने गाड़ी छोड़ दी,
गोल्ड
ले लिया. गोल्ड चाहिए मुझे
बच्चे. ये कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा खेलने वाला भी, उसको पता था गोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा. जितने गोल्ड पहुंच गया ना सर,
आज 70 का
पता नहीं कब लिया होगा, 50-60 हज़ार के हिसाब से लिया होगा. 2-70-80 तो पहुंच गया सर, 70 हो गया आज तो, जो जंप लगा है
2-7. खैर इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड पड़ गया ना.
हाँ उसी का इम्पैक्ट आ रहा है सर. एयरवेल लगुना कहाँ देख रहे हैं सर?
मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो हमने लगुना बेचा था ना, एक तो हमने लगुना बनाया था उस जगह पर जहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं था. तो DJ सिटी वॉज अ एक ह्यूज प्रोजेक्ट, बट वो प्रोजेक्ट की तरफ कोई देख नहीं रहा था. तो ये पता है कैसे शुरू किया था मैंने, ये मैंने कोई बिजनेस डील नहीं की थी, मैं बैठा हुआ था कुछ चंद दोस्तों के साथ, तो मैं गया एक दफा ड्राइव करके डी एच एस सिटी और देखा मैंने, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है? कहीं हाँ पड़ी हुई। तो मैं सोचा कि मैं कोई ऐसी कोई ऐसा कोई लैंडमार्क क्रिएट करूँ, तो दैट विल बी अ लैंडमार्क प्लेस इन पाकिस्तान, कि जहाँ पे दुबई में तो लगून जो है ना क्रिस्टल लगून, वो तो 7-8 जगह पर बन चुकी है। बिकता क्या है? पानी बिकता है ना। आज हमने कभी पानी का फायदा उठाया? दुबई ने क्या किया? उनके पास आई थिंक कुछ शायद 19 या 20 या कितनी किलोमीटर था पानी, उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 1000 किलोमीटर पर ले गए। पानी बिकता है दुनिया में, हर जगह पानी बिकता है। हमने अपने साहिल को छोड़ा हुआ है, तो हमने कहा कि यार अगर पानी के पास लोग नहीं आ सकते तो हम लोगों को पानी के पास ले जाते हैं। तो जो हमने पहला फेज लॉन्च किया था, जो हमने पूरा बेच दिया फेज को, उसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सेकेंड फेज हमने अभी लॉन्च नहीं किया। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारा ये फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट 80% कंप्लीशन पर आ जाए, फिर हम सेकेंड फेज खोलेंगे।
बिल्कुल ठीक,
लोगों को दिखे
ताकि लोग
आए। तो हाँ, मैं तो कहता हूँ लोग जाके दिखे वहाँ पे, और इंशाल्लाह जब हम वहाँ लगून भर देंगे
उसके बाद लोग आएंगे सर,
तो आप देखिएगा,
और वो बेंचमार्क भी सेट हो जाएगा डी एच एस सिटी के लिए भी सर।
उस वक्त अब अभी आप देखिए, इस वक्त हम लोग गुजरावाला कर रहे हैं, एक और शहर में कर रहे हैं, थर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपना। मुझे तो अभी लोग कह रहे हैं कि तुम अभी भी ज़मीनें खरीद रहे हो, अभी भी तुम जो है ना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो। मैं कहा तुम देखना कि आज तुम्हें जो प्राइस मिल रही है ना ज़मीन की, विद इन 2 ईयर्स तुम्हें उस पैसे तुम्हें नहीं मिलेगी।
सर एयरवाय सोशल इश्यूज़ पे ही बड़ा काम करते हैं सर, गरीब नवाज फाउंडेशन, एयरवाय फाउंडेशन, तो सर स्पेशल किड्स के लिए भी कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, कोई इदारा ऐसा कुछ खोलने जा रहे हैं आप जिससे उनको भी?
अदनान, मेरी जो पहली बेटी थी सुमैया सलमान
जी सर,
उसका इंतकाल हुआ था पिछले साल, शी वॉज़ अ स्पेशल चाइल्ड, सो शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 23। सो बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया है हमारे फाउंडेशन
के द्वारा, काम किया कर सकते हैं सर वो तो।
हाँ मतलब मेरे पास तो 23 साल मेरे हाथ में रही ना, तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाट टू पेरेंट्स गो थ्रू। स्पेशल चाइल्ड का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो मियाँ बीवी पड़ता है। तो असल जो काउंसलिंग चाहिए होती है ना, वो ऑटिज्म हो गया फॉर एग्जांपल, ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, वेरी डिफिकल्ट किड्स टू हैंडल, तो उसकी थेरेपी जो है ना बच्चों ज़्यादा माँ को, उसके बाद बाप को। हमने बहुत सारे घर देखे टूटे हुए बिकॉज वो बच्चे को संभाल नहीं पाते, वो उनको पता नहीं चलता बच्चे को हो क्या रहा है। ऑटिज्म इज़ अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, सच एज यू नो इमोशनल इश्यूज, सच एज एंगर मैनेजमेंट, बच्चे चीज़ें तोड़ देते हैं, यू नो उनको पता नहीं होता, अपने इमोशन पर काबू नहीं कर सकते कि ऑटिस्टिक होते हैं। अब वो जो है ना माँ पे और बाप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट अब अल्लाह का शुक्र ये है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी 25 साल पहले, तो उसको फिट्स होते थे, ठीक है ना, दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ इम्पैरिटी ऑफ अ ब्रेन। तो मुझे याद है जब मैं आखा से निकला, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसका इलाज है, अब है उसका इलाज। शी वॉज जस्ट अ B6, हाँ B6 डिपेंडेंट थी वो
उस वक्त, नहीं था
हाँ एक विटामिन की डिपेंडेंट थी, ठीक है ना, मुझे हमें बाद में मालूम पड़ा। तो अब दुनिया जो है ना, अब हैंडलिंग भी अच्छी हो गई है बच्चों की, और फैमिलीज की हैंडलिंग भी अच्छी हो गई है, मगर हमें इस मुल्क के अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है फॉर स्पेशल चाइल्ड, नॉट ओनली हॉस्पिटल, अ डे केयर। मुझे जो सबसे बड़ी बात तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर करनी थी, वही करनी थी कि आपको पता है, आप सबको पता होगा कि ओपीडी की इंश्योरेंस नहीं होती हमारे यहाँ। पता क्या होता है ओपीडी? मुझे ज़ुकाम हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं।
बिल्कुल ठीक है,
ठीक है ना। अब जो कि मैं पैसे होते नहीं हैं, तो मैं वो ज़ुकाम के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए मैं जा सकता नहीं हूँ। तो मैं कहा ठीक है, नज़ला ज़ुकाम है तो मैं फिर पैराडॉल खा लूँगा,
एंटी एलर्जिक ले लूँगा,
या मैं स्टीम कर लूँगा।
अब
उससे एक स्टेप आगे चले जाए, मुझे हो गया निमोनिया, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, जो बेसिक बुनियाद होती है। अब निमोनिया से जो हमारे यहाँ कहते हैं डबल निमोनिया, डबल निमोनिया मतलब दोनों लंग्स उभारे, फिर हम भागते हैं इमरजेंसी के अंदर जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस खड़ी हो जाती है पैसे देने के लिए। तो अगर
रूट कॉज पे ही रोक दिया जाए सिचुएशन आगे जाएगी नहीं।
तो अगर उसकी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देना शुरू कर दे, दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, अगर मैं जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास अब मैं आपको, यार मेरे यहाँ दर्द कर रहा है, तो वो चेक करके यार कि तुम्हारा अपना किडनी का मसला है, तुम्हारा लिवर का मसला है, तुम्हारा अपेंडिक्स का मसला है, हम अपेंडिक्स फटने के बाद जाते
हैं। ओहो सर, हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, गैस कहते हैं, गैस
गैस
है, जा वॉक करके आ जा।
नहीं वो जाता नहीं, वो जाता नहीं बेचारा, वो जाता ही नहीं, उसको पता कि वो 2,000-2,500 रुपये ले लेगा, उसको होते नहीं है। वो कहता है यार वेट करता हूँ मैं 3-4 दिन, जब मुझे दिल का दौरा पड़ेगा ना वो इंश्योर्ड है ना। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई चीज़ करनी चाहिए जो आपकी एटलीस्ट लोअर लेवल की इनकम के ऊपर, जो आजकल इन्फ्लेशन बढ़ गई है उसको इंश्योर्स
और बेसिक के ऊपर जाती है सर, बेसिक कभी गैस की सूरत में हार्ट अटैक जाता है।
और ये अगर अदनान ये इसका अगर लोगों ने इनिशियली जाना शुरू कर दिया ना, तो आपके जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में रश पड़ता है ना वो ख़त्म हो जाएगा।
क्या बात है सर,
क्योंकि डॉक्टर्स क्लिनिक्स में कहते हैं जीपी जनरल प्रैक्टिशनर्स, उनके पास रश रहेगा, उसके बाद जो है ना आपका हॉस्पिटल के जो है ना जो
इमरजेंसी है खासतौर पे, उस पे और वो इमरजेंसी सर इमरजेंसी के लिए यूज होगा सर फिर।
एग्जैक्टली
सही तरीके से जिस तरह होना चाहिए इमरजेंसी, या तो इमरजेंसी को भी पता नहीं किस तरह यूज कर रहे हो। सर कराची से आपका प्यार, सर पाकिस्तान से तो बहुत प्यार है सर, कराची से प्यार सर आपका ज़्यादा नहीं है सर।
हाँ मतलब ये लोग ये शिकायत करते हैं कि लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आप क्यों नहीं प्यार करते। मैं कहा मैं पूरे पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, जो कि आई एम फ्रॉम कराची है ना, और मेरे पास कराची किंग्स की टीम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कराची से प्यार करता हूँ, करता हूँ प्यार कराची से। क्या
सर ये बताया करें, मेरा एयरवाइज भी है सर, वो पूरे पाकिस्तान का है।
हाँ पूरा पाकिस्तान का
है, पूरे पाकिस्तान का सर।
देर लगुना मैंने कराची के बाद कहाँ लॉन्च किया, गुजरावाला में, वो पंजाब है ना हमारा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कि मैं सिर्फ सारे प्रोजेक्ट कराची में कर रहा हूँ, तो नहीं नहीं मुझे बिल्कुल पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के एक एक शहर से, एक एक ज़िले से, एक एक तहसील से प्यार है।
पीस को कैसे डिफाइन करेंगे सर, सलमान इकबाल पीस बिजनेस से पैसों से देखते हैं या?
मैं सुकून अपने बच्चों की आंखों में देखता हूँ।
ओहो
बस ओहो। मेरा जो सबसे ज़्यादा सुकून होता है ना,
क्या बात,
मैंने गो होम, मेरी दो छोटी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, एक 8 साल की एक 7 साल की, उनको देख के बस।
सर सलमान इकबाल रुकने वाले नहीं है, रिटायरमेंट पीस ये के छोड़ दें यार, मैं जाके इसी बीच पे बैठ जाता हूँ, बस हो गया यार, बहुत काम कर लिया मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा कर लिया हर चीज़ में।
तो अदनान 50 का हुआ यार, अभी 10 साल तो है ना मेरे अंदर।
नहीं सर 20-25 साल है हमारे साथ, तो
20-25 साल काम के लिए 10 साल है। नहीं कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ कि यार बस है ना जाके आराम करूँ, मगर फिर मैं ये सोचता हूँ
छोड़ेंगे सर आपको, आपके
लोग भी छोड़ेंगे। अदनान हमारे मुल्क में अल्लाह ने बहुत कम लोगों को वो ताकत दी है और फिर हिदायत दी है। मैं जब चला जाऊँगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि भाई तुझे इतना दिया और तुझे के बीच पे बैठ के मौसम इंजॉय कर रहा था।
ओहो हाँ सर क्या बात,
तो जवाब भी देना,
ताकत भी दी है, हिदायत भी दी है, क्या बात।
तो अल्लाह को वापस जाके जवाब देना है ना, तो उस जवाब के चक्कर में हम लगे हुए हैं कि बस कोई अल्लाह हमारे से आखिर में आखिरत में हमारी अच्छा जवाब सुन दे।
और सर वही जवाब आपको रोज़ कंसिस्टेंटली उठाता है और कोई ब्रेक नहीं सर।
बिल्कुल
थैंक यू सर।
थैंक यू जी,
मेरी कोशिश थी कि आपकी वो साइड दिखाऊं जो लोगों ने नहीं देखी, और सर जितना ऑन पॉइंट बोलते हैं ना इसमें कोई कट कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ मुझे काटनी पड़ेगी कोई कंट्रोवर्सी सर मैं निकाल नहीं पाया आपसे, क्योंकि आप बहुत ऑन पॉइंट बोलते हैं सर।
क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे तो निकलेगी ना, हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते ही नहीं है, कंट्रोवर्सी के लिए हमने रखा हुआ है ना यार भाई वो भी निकालता रहता है।